IBS ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਵਰਣਨ ਕੀ ਗਈ ਥੀ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਗੁਣੋਂ ਕੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੋ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਗੁਣੋਂ ਕੋ ਬਸ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਉਨਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਯੋਗੀ ਉਸੇ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੁਰਤ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਗਾੜਤ ਕੋ ਘੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਦੇਵਤੇ ਆਦਕ ਔਰ ਸਿੱਧ ਸਮਰੱਥ ਆਦਕ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਜੁੜ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਜੁੜ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ, ਵੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਬਦ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਮ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਾ, ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਬੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਰਹੱਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਿਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਹੀ ਮਾਨੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਹੀ ਮਾਨੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਜੋ ਕਭੀ ਡੋਲਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀਓ ਸੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਐ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਉਸ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਮਰਤਬੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਜੋ ਦੈਵੀ ਬਲ ਹੈ, ਵੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਤਨ ਮਨ ਕੋ ਜੋੜ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਔਰ ਬਲ ਔਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਲ ਔਰ ਤਾਕਤ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਐਸਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਨਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਜੋ ਜਿਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮ ਆਪਣੇ ਸਵਾਇਸ ਆਤਮਾ ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੋ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਖੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਬਿਨਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਔਰ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦਿਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਿਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਪੇ ਐਸਾ ਔਰ ਕੋਈ ਦਿਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਬਗੈਰ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਬ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆਤ ਹੁਆ, ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से जब भक्ति में लग गए तो उनको बहुत आनंद हुआ। भक्ति के अंदर बहुत प्रेम उनके अंदर जागा, ऐसा प्रेम जागा कि एक दिन मंदिर की तरफ जा रहे थे वो, तो मंदिर की तरफ जाते जाते एक पुजारी को देखा और भगत नामदेव ने स्वयं उनको देखकर एक मुख से बोल उचारा है। स्वयं भगत नामदेव ने फरमान दिया, एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर तरिए पाओ। भगत नामदेव जी कहते, ऐ पुजारी मुझे ये बता, ये जो पत्थर है इसको बहुत प्रेम प्यार कर रहा है, तराशा हुआ है, तूने इसको गोल किया हुआ है और बड़ा तेरा मन, बहुत तेरा प्यार इससे लगा हुआ है। तो गुरु साहब फरमाते हैं, भगत नामदेव जी, दूजे पाथर तरिए पाओ, तो मुझे ये बता, अगर ये पत्थर है तो वो सड़क पर पड़ा हुआ वो क्या है? क्योंकि उनको नाम की दृष्टि उनके अंदर पैदा हो गई है, अब सत्य उनको हर चीज में नजर आने लगा है, अब सच का प्रचार भगत नामदेव जी करने लगे हैं। तो भगत नामदेव जी ऐसे ही उन्होंने पुजारी को कह डाला कि आप एक पत्थर की इतनी पूजा करते हैं और वही पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ है, उस पर दुनिया पैर रख के जाती है, अगर उसी पत्थर को भी तराश कर सामने रखा जाए तो बराबर उसकी पूजा होगी। तो ऐसे भगत नामदेव जी ने उस पंडित के प्रश्न के उत्तर दिए, तो कहते, कह नामदेव हम हर की सेवा, के भगत नामदेव फरमाते हैं, जे ओह देव ता ओह पी देवा, कह नामदेव हम हर की सेवा, जे ओ भी देवते ए भी देवता होना चाहिए। गुरु साहब फरमाते हैं, अगर वो भी देवता है तो ये भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है फिर। इसीलिए फरमाते हैं, जे ओह देव ता ओह पी देवा, अगर वो देव है तो ये भी महादेव है, अगर वो पत्थर रखा हुआ देव है तो ये भी महादेव ही है। अगर नहीं मानते हो तो नामदेव तो कह रहे हैं, कह नामदेव हम हर की सेवा, हम तो उस परमात्मा की सेवा करते हैं जो सर्वव्यापक में मौजूद है। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर तरिए पाओ। सो इस प्रकार से भगत नामदेव जी ने पंडित को सिद्ध रास्ते पे लेकर, उसको अच्छे मार्ग पर लाकर, सत्य के मार्ग पर चला करके अच्छे नाम उनको रिटर्न कराए, उनको अच्छे नाम के बारे में बताया, हरि के नाम के बारे में ज्ञात कराया। तो पंडित जी भी बस हरि के राम नाम में जुट गए। अब इस प्रकार से गुरु साहब फरमाते हैं, तिथै जोद महाबल सूर तेन मह राम रहा परपूर। गुरु साहब फरमाते हैं, ऐ योगी पुरुषो, उस कर्म खंड के अंदर जो धर्मी योद्धे जाते हैं, रथी योद्धे, महारथी योद्धे, अति रथी सूर में पहुंचते हैं, अथवा कर्मवार शरीर इंद्रिय जो हैं मन के फतेह करने पर संत सूर में पहुंचते हैं, जिन्होंने अपने मन को फतेह किया होता है, वहां पर वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने मन को फतेह किया है। ऐसा गुरु साहब ने उनको, योगी को बताया। और गुरु साहब फरमाते हैं कि व्यापक स्वरूप वाहे गुरु परिपूर्ण परमात्मा के हृदयों के अंदर, हृदय के अंदर निवास कर रहा है, जिन्होंने उस परवरदिगार के नाम को सत्य में जाना है। और उस कर्म खंड जो है, जहाँ पर गुरु साहब फरमाते हैं, तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहा परपूर, कि वहाँ पर योद्धे सूर में और बहुत बहुत बड़े अथीरथी सूर में मौजूद उस कर्मखंड में पहुँचते हैं जहाँ पे गुरु साहब महाराज जिनको मिलते हैं, तिन में राम रहा परपूर, जिनके हृदय के अंदर राम नाम परपूर रहा होता है। गुरु साहब फरमाते हैं, तिथै सीतो सीता महमा माहे, ऐ योगी पुरुषो, अगर तुम सीता राम की बात करते हो तो सीताराम भी उस परमात्मा के नाम को जपते रहे हैं ताकि रूप ना कथने जाए, और जिन्होंने इस परमात्मा के नाम का रटन किया है, नाम का जपन किया है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर नाम को हर वक्त हर तरह उच्चारण किया है, उनका नाम लिया है, तो गुरु साहब फरमाते हैं उनके रूप की सुंदरता का कोई कथन नहीं किया जा सकता जिन्होंने परमात्मा का नाम लिया है। जो परमात्मा के नाम में मौजूद होते हैं सो उनके रूप का कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं ना ओ मरह न ठगे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। गुरु साहब फरमाते हैं ऐ योगी पुरुषो, उस कर्म खंड की अवस्था वाले जो लोग होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, परमेश्वर आप उनमें वासा करता है और उनके मन के अंदर प्रभु का वासा हमेशा रहता है। फिर ना तो वो कभी मरते हैं और ना वो कभी ठगे जाते हैं। और जिनके राम वसे मन माए, जिनके हृदय में, जिनके मन के अंदर राम का वासा हो गया, ना तो उनको कोई ठगता है, ना उनको कोई मार सकता है, ना उनके पैंडों के अंदर कोई जा सकता है, ना उनके मार्ग के अंदर कोई अटकत जा सकता है। तो गुरु साहिब महाराज जी ने ऐसा बहुत अच्छे से उत्तर देते हुए योगियों को, महाराज साहिब गुरु नानक देव जी, जगत गुरु नानक जी, उनको ज्ञान करा रहे हैं कि जिनके अंदर नाम होता है उनके अंदर किसी चीज का भय भाव नहीं होता। तो गुरु साहब फरमाते हैं सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। गुरु साहब फरमाते हैं कि जहाँ पे ये मन के जीते हुए प्रेमी जाते हैं, जिन्होंने मन को जीता है सूर में, मन को जीते हुए सूर्य पहुँचते हैं वहाँ पर, तो साध संगत जी गुरु साहब फरमाते हैं कि उस सचखंड में स्वयं निरंकार परमात्मा हाजिर दिखते हैं, और कर कर वेखे नदर निहाल, और पैदा कर करके गुरु साहिब महाराज सृष्टि को नजर से निहाल करते हैं, अपनी नजरों के दरमियान उनको पालते हैं। फिर गुरु साहब आगे फरमाते हैं तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे ता अंत न अंत। गुरु साहब फरमाते हैं उस सच खंड के अंदर उसके साथ संबंध जो रखते हैं, उस वाहिगुरु के साथ अभेद जो हो जाते हैं, जो महापुरुष को मिल जाते हैं, उसकी दृष्टि में अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत लोक अवस्था उनके सामने प्रकट हो जाती है। ये तो एक ब्रह्मांड की बात है ना, जब कोई मन को जीतता है, स्वयं परमात्मा के पास जब जाते हैं, करोड़ों खंड ब्रह्मांड कि उनकी सोझी हो जाती है, दिखते हैं उनको। तो इसलिए फरमाते हैं कि जो परवरदिगार परमात्मा है, इनके आगे तकसीम देश नजर आते हैं, अगर कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहे तो उसका अंत, उसका सिरा, उसका हद, उसका कोई पार पारा का पता नहीं लगता है। नानक अंत ना अंत, तो जे को कथे, तो जैसे गुरु नानक साहब जी ने फरमान किया नानक अंत ना अंत, तो ऐसे गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि ऐसे तो पुरुषो वहां पे मैं भी इस चीज का अंत नहीं पा सकता हूं कि परमात्मा कैसे कैसे है, सचखंड का सार कैसा है, इतना सचखंड का सार जो है बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे कि फौलाद के लोहे को खाने से मुंह टूट जाता है, जबड़े टूट जाते, दांत टूट जाते फौलाद को खाने से, तो वो खाया नहीं जाता है, इसी तरीके से उस सचखंड की महिमा को बयान करना बिल्कुल गलत होता है। इंसान की आयु खत्म हो जाएगी, उनकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन उस सचखंड की कोई महिमा बता नहीं सकता है। जहां पर जिन्होंने दिल जीते वाले पुरुष वहां पे जाते हैं, जे को कथे ता अंत ना अंत। उनका कोई काथ भी करना चाहे, उनका भेद लेना चाहे, तो भी उनका भेद वो ढूंढ नहीं सकते हैं, पछताएंगे वो जो सचखंड के भेद को ढूंढना चाहते हैं, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो गुरु साहब फरमाते हैं, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तवै तिवकार। गुरु साहब फरमाते हैं कि सचखंड की अवस्था जो लो लो प्रकाश अथवा रोशनी, नूर ही नूर आकार दिखते हैं वहां पे। तो गुरु साहब फरमाते हैं, और जिनके हृदय के अंदर परमात्मा का प्यार होता है, वो सारे नूरी आकाश से वाहे गुरु का हुक्म होता है। जैसे जैसे वो हुक्म करते हैं, तैसे तैसे सिख जो है कार करता है। जैसे जैसे परमात्मा का हुक्म होता है, तैसे तैसे परमात्मा के बारे में वो नाम जपते हैं, और परमात्मा के बारे में ऐसे ऐसे कथन करते रहते हैं, जैसा खुद परमात्मा अपने बारे में कथन कराते हैं, वैसे ही वो करता है, अपनी बुद्धि के मुताबिक नहीं, परमात्मा के हुक्म के अंडर रह करके वो परमात्मा की तारीफ करते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। हजूर फरमाते हैं कि सचखंड के अंदर जो निरंकार जीवों की करनी को देख रहा है, उसकी विचार करके वो खुद प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐ सिद्ध लोको, ऐ पुरुषो, ऐ योगी पुरुषो, उस सचखंड के बारे में सार करना बहुत मुश्किल है, कथन करना बहुत मुश्किल है, उसकी महिमा को कथन नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने पहले सुना कि लोहे को खाने से दांत टूट जाते हैं, ऐसे सचखंड का कोई वर्णन करना चाहे तो उसकी आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन सचखंड का वर्णन कभी नहीं हो पाएगा। तो गुरु साहब फरमाते हैं, कड़ियाय सबद सच्ची टकसाल। सतगुरु फरमाते हैं, ऐसे दिलों को जो अपने जीवन के सिक्के को साध संगत स्वरूपी में, साध संगत के स्वरूप में, जैसे आप संगत सब यहाँ पे बैठे होते हैं, ऐसे ही कुछ संगत के स्वरूप में सच्ची रूप को धारण करता है, उसको टकसाल बोला जाता है। उसमें वो उपदेश के रास्ते उसकी घाड़ना घड़ी जाती है, जैसे जैसे सत्य का उपदेश होता है, तैसे तैसे उसको घड़ा जाता है, उसको घड़ घड़ करके, उसको त्राश त्राश करके अच्छे तरीके से उसको अच्छा किया जाता है, शब्द सूरत की पहचान कराई जाती है। सो टकसाल का मतलब ये होता है, तो इसका दूसरा अर्थ मैं आपको बता दूँ, टकसाल का मतलब वो होता है जहाँ पे बहुत छोटे से बच्चे को पढ़ा दिया जाए, और छोटी सी आयु में बच्चा इतना बड़ा विद्यावान हो जाता है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि जो टकसाल के अंदर केवल उनको उस वाहिगुरु परमात्मा के हुक्म के अंदर उनको तराशा जाता है, परमात्मा की वाणी के जरिए उनको तराशा जाता है, सत्य वाणी के लिए तराशा जाता है, शुद्ध बोलने के लिए तराशा जाता है, सच बोलने के लिए तराशा जाता है, उसको भी बोला जाता है टकसाल। जैसे हम एक स्कूल बोल देते हैं, ऐसे सिख हिज़्म में टकसाल बोला जाता है, जैसे हम इस्लाम हिज़्म में मदरसे बोल देते हैं, हमारे में विद्यालय बोला जाता है। और वहाँ पे जब कोई सिख पढ़ता है तो बिल्कुल उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, और वो परमात्मा की सिफत व तारीफ करता है और हक सच पर पहरा देता है, इसका भी नाम टकसाल है। यहाँ पर इनको तराशा जाता है सच्ची वाणी के अंदर, सच क्या है, वाणी क्या है, परमात्मा क्या है, उनके बारे में बताया जाता है, और सही सत्य मार्ग पर, सत्य रास्ते पर उनको चलने का हुक्म किया जाता है, उसको भी टकसाल बोला जाता है। अब गुरु साहेब आगे सिखों के विचार के बारे में बताते हैं कि जत क्या है, पहरा क्या है, धीरज क्या है, सुनियार क्या है, अहरन क्या है, मत क्या है, वेद हथियार क्या है। तो आओ गुरु साहब शरण करते हैं। जात पहारा धीरे सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। जत नाम होता है ब्रह्मचार का, जो सदा जती रहने वाला हो, जो कभी विषय विकार में ना पड़ा हो। सबसे पहले सिख के पास ये जत की निशानी होना अवश्य लाजमी है। दूसरा, गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमत का जत जो है वो नारी की जति होना है। जैसा कि एक नारी जति होती है, पतिव्रता होती है और दूसरे मनुष्य पर अपनी निगाह नहीं रखती है, ऐसे पतिव्रता तरीके नारी के सन्मुख होने से गुरु साहब फरमाते हैं कि जैसे एक नारी पतिव्रता सती रहती है, ऐसा सिख गुरु परमात्मा की मत लेकर सती रहता है। जत, उसका जत जो है कायम रहना चाहिए। तो गुरु साहब फरमाते पहारा, सुनियारे की जो भट्टी होती है उसको पहारा बोला जाता है। सुनियारे की जो भट्टी होती अथवा दुकान जो होती है, और उस दुकान में मन के विपता को पढ़ने करके धीरज रखना, यही सुनियारा माना जाता है। जैसे हम धीरज सुनियार के सुनियारे की तरह धीरज रखे हम अपने दिल के अंदर, अपने अंदर। अहरन, अहरन नाम होता है लोहे का, जो बहुत बड़ा, एक लोहे का इतना बड़ा सिल होता है, उसको रखा जाता है, उसके हथौड़ों से मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन वो हिलती नहीं है। अहरन मत, मत नाम है यहाँ पे हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का, और उसके जैसी मति हमें रखनी चाहिए। अहरन की जैसी हमारी मति होनी चाहिए, लोहे की तरह जो कभी स्थिर हो कभी डोले ना। अहरन मत वेद हथियार, और वेद रूपी हमारे पास हथियार होना चाहिए। जब कोई प्यार से किसी को समझाना हो तो उसको वेदों से समझाया जाता है, वेद रूप हथियार से। अगर कोई प्यार से भी ना समझे तो फिर उसको लाठी और थप्पड़ से समझाया जाता है। तो यहाँ पे गुरु साहब फरमाते हैं अहरण मत, उसकी मति जो है एक लोहे की तरह स्थिर होनी चाहिए, अडोल, जो कभी डुले ना, गिरे ना, हिले ना, ऐसी होनी चाहिए। गुरु साहब फरमाते हैं कड़ियाए सबद सच्ची टकसाल, इस तरीके से फरमाते कि सच्ची टकसाल क्या है। और गुरु साहब उससे पहले ये जो पंक्तियां फरमाते हैं, ये हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा दृष्टांत दिया था कि कड़ियाए सबद सच्ची टकसाल, कि उनको वहाँ पे कहड़ा, उनको तराशा जाता है सच्ची टकसाल में। उसके बाद, उसके पहले गुरु साहब जो उसके बाद में पंक्ति आती है, जत पहार के बाद में लाइन जो आती है, अब हम उनका निर्णय करते हैं। पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत ते तटहाल। गुरु साहब फरमाते हैं कि वाहे गुरु के भय में रहना, खला नाम है हमारी खाल का, हमारी चमड़ी में जो धुकी रहती है उसके डर की धुनी हमारे अंदर रहनी चाहिए, उसके डर रूपी धुआं हमारे अंदर होना चाहिए। तो गुरु साहब फरमाते हैं पाओ खला, हमारी खाल में डर होना चाहिए परमात्मा का, अगन तपताओ, और आग के बराबर तप होना चाहिए सिख का। कोई भी पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई भी मनुष्य है, उसका तप तेजस्वी होना चाहिए, जैसे आग के करीब कोई जा नहीं सकता है, जैसे सूरज के करीब नहीं जा सकता है। सूर्य दूर से इतनी गर्मी रखता है, इतना गर्म है, तो सोचो उसके पास जाने से क्या हाल हो सकता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जैसे सूर्य का तप होता है, सूर्य की रोशनी होती है इतनी गर्म, उसके जैसा सिख का तप होना चाहिए, लाजमी है। गुरु साहब फरमाते हैं पांडा पाव अमृत तटाल। पांडा पाव का मतलब है प्रेम की कुठाली जो है शरीर, इसमें अमृत सोने की तरह शुद्ध जीवन अथवा गुरु उपदेश रूप जो सोना है। गुरु के, इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के उपदेश को सोना बना लो और उसको अपनी कुठारी के शरीर के अंदर ढाल लो। इसका मतलब ये है कि परमात्मा के हुक्म को सोना बनाकर उसको इस शरीर रूप कुठारी में ढाल लो। तो गुरु साहब फरमाते हैं, इस प्रकार से जब इसमें हम डाल लेंगे तो गुरु उपदेश रूप सोना ढाल के इसमें हम डाल लेंगे तो हमारा जीवन और शुद्ध हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, जो परमात्मा के करीब पहुंचा देता है, जो बिल्कुल परमात्मा के सन्मुख खड़ा कर देता है, जो परमात्मा के हुक्म को सोना बनाकर अपने हृदय में धारण कर लेता है, वही परमात्मा करीब पहुंच जाता है, उसका मेल मिलाप हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, कड़ियै सबद सच्ची टकसाल, जिसका हमने आगे आपको एक दृष्टांत दिया था, कड़ियै सबद सच्ची टकसाल। अब उसके बारे में गुरु साहब विचार करते हैं कि इस प्रकार साध संगत स्वरूप में, साध संगत में बैठ करके परमात्मा का यश श्रवण किया जाए, उनके शब्द को गाया जाए, उनकी धारणा को सुना जाए और उनके उसके अंदर रहकर सुचज्जे जीवन को डाला जाए, पाया जाए, स्वच्छ जीवन को धारण किया जाए, ये सत्संगत के अंदर ऐसा होता है। और दूसरा तीसरा अर्थ इसका ये बनता है, टकसाल संगत भी बनती है जिसमें बैठकर अपने आप को शुद्ध किया जा सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं, जिनका नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ सिद्ध पुरुष योगी पुरुषो, उस वाहे गुरु की नदर करम मेहर भरी निगाह होती है, उनकी ही निगाह की हुई कार मेहनत जो है, सीखी जो है, ये कमाई करने से सफल होती है, और नदरी नजर के मालक वाहे गुरु की मेहर की नजर होती है, जिस करके ये निहाल कृतोकृत होती है, उस परमात्मा की दृष्टि के सामने इस सिक्खी को फला फुलाया जाता है, जो परमात्मा के सन्मुख हो करके जो वाहे गुरु के विचार को शुद्ध मानता है, अपने हृदय में विचार करता है, परमात्मा के धारण कर लेता है, तो इसीलिए वो शुद्ध हो जाता है। और फिर परमात्मा वाहिगुरु अपनी मेहर की दृष्टि जो है, अपने प्यार भी दृष्टि अपने सिख पर सदैव बनाए रखते हैं। तो फिर गुरु साहब फरमाते हैं, श्लोक, अब यहाँ पे इस वाणी का जो है संपूर्ण हुआ पाठ, जपजी साहब जो प्रधान वाणी है सिख धर्म की, पहली वाणी यहाँ पे श्लोक पर आके समाप्ति होती है, यहाँ पे सारी वाणी संपूर्ण होती है। तो गुरु साहब फरमाते, श्लोक, ये श्लोक जो जपजी साहब के संबंध के साथ लिखा जाता है, और गुरु साहब फरमाते हैं कि इसके अनुसार गुरु साहब फरमाते हैं, इस लोक अथवा स्वयलोक, लोक पर लोक की बात यहाँ पे कही जाती है, कि इस सिद्धांत रूप समुच्ची रचना की सृजना उपादन करने वाले, निमित्त कारण करने वाले जो हैं वो परवरदिगार आप परमात्मा हैं, अर्थ स्वलोक वैकुंठ भी, और स्लोक का मतलब है प्रकार की मुक्ति, वाचक है, मुख अर्थ इसका काव का छंद समझा जाता है, स्वलोक का मतलब है ये लोक और परलोक उसके बारे में। तो यहाँ पे गुरु साहब जी समाप्ति करते हैं श्लोक के ऊपर, इसके विचार हम कल, इसकी विचार संपूर्ण हो जाएगी और जपजी साहिब की वाणी जो है वो समाप्ति हो जाएगी। तो आगे से भूल चुक की माफ़ी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।